शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज भट्टी के द्वितीय दिवस का प्रथम सत्र शुरू होने जा रहा है। हमारे बीच हमारे अति आदरणीय सम्माननीय राजू भाई जी उपस्थित हुए हैं। आपका टॉपिक है निमित्त निर्माण भाव लाने की विधि। मैं समझती हूँ ब्राह्मणों में कौन नहीं जानता होगा राजू भाई जी को। जो मुरली जानते हैं वो मुरलीधर की मुरली पहुंचाने वाले राजू भाई को अवश्य जानते हैं। आप हमारे यज्ञ के वरिष्ठ प्राता हैं, यज्ञ के ऐसे गुप्त अनमोल रतन हैं जो परमात्मा के ज्ञान रत्नों को गहराई से अपने जीवन में उतारा है। आपने बाल्यकाल से ही परमात्मा को पहचान के पेरेंट्स के साथ भगवान के यज्ञ में आए और आपकी खास सेवा मुरली की। केवल एक मुरली प्रिंट करना, मुरली पहुंचाने की बात नहीं है। मुरली का गहन अध्ययन, हर ब्राह्मण आत्मा को मुरली पहुंचती है। कई लोगों को मुरली क्या होता है, पूरा पढ़ने को समय नहीं मिलता है, तो क्या चाहते हैं, ठीक है सार सार ही सही, उस सार में सारे मुरली का पूरा ही सार समाया होता है। तो ये सारा कैसे निकलता है, बाबा ने सीधी मुरली सुनाई परंतु उस मुरली का अध्ययन करके इतना सार निकालना और हम सब तक पहुंचना। पहले प्रश्न उत्तर का शुरू हुआ, फिर मुख्य धारणाएं, फिर वरदान, श्लोगन, एक 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 बढ़ते गए। ये सारे अव्यक्त मुरली, साकार मुरली के अध्ययन से उन्होंने अपने दिमाग से ये सब निकाल करके सारे ब्राह्मण आत्माओं को खुराक दिया है। तो सारे ब्राह्मणों को जो खुराक मिल रही है, तो भगवान की खुराक को पहुंचाने का एक होता है माल मिल गया, लेकिन उस माल को मक्खन बना के हमारे तक पहुंचाने का एक दिव्य कार्य हमारे राजू भाई जी का है। और जैसे भगवान की मुरली है और वैसे ही भगवान की मुरली को उन्होंने दूसरा किसी का नाम नहीं, मुरली वाले भाई या मुरली वाले बहन। एक गीत होता था, राधिके तूने बंसुरी चुरा ली। हम लोग जब सोचते थे तो मम्मा ऐसी मुरली चलाती थी, भगवान की मुरली को मम्मा ने चलाया, इसलिए राधिके तूने बंसुरी चुराई गाना हो गया। और प्रैक्टिकल में देखा जाए, भगवान की मुरली हमारे राजू भाई ने चुरा ली। चुरा ली अर्थात उन्होंने इतना गहन अध्ययन करके अपनी प्रॉपर्टी बना ली, वो प्रॉपर्टी हमारे तक पहुंचा के हमको भी पावरफुल बना रहे। ऐसे आदरणीय भाई साहब का दिल से स्वागत है। साथ साथ हम आपसे सुनेंगे आज खास करके कि निमित्त निर्माण भाव लाने की विधि, ये खुद आपकी जीवन की धारणा है आदरणीय भाई साहब।
ओम शांति। सभी बहुत प्यार से मधुबन की तपस्या भट्टी का लाभ ले रहे हैं, नए नए दृश्य भी देख रहे हैं। मधुबन के चारों धामों की विशेषताओं को भी समझ रहे हैं ना। चार धाम जीते जी भी करते हैं तो जाने के बाद भी करा देते हैं। तो हमारे आदरणीय रामलोचन भाई, जिन्होंने बाबा की यज्ञ में बहुत अथक बन करके सेवाएं की, विशेष करके भंडारे की सेवाएं, भोजन बनाने की सेवाएं, वीआईपी डाइनिंग हॉल संभालने की सेवाएं, और उसके साथ साथ उन्होंने ज्ञान और योग को बहुत गहराई से समझा, अनुभव किया और बहुत सारी भट्टियाँ क्लासेज भी कराई है। कई बार मेरे साथ भट्टियों के लिए कार्यक्रमों में जाने का भी मिला। बहुत नम्र चित आत्मा और सबको सम्मान देने वाली आत्मा थे। तो उनका ड्रामा में ये संगम युगी पार्ट पूरा हुआ, नई सेवाओं के लिए आत्मा गई, तो उनको विदाई दे करके मैंने कहा यहाँ तो फूल चढ़ा के मैं आता हूँ, क्योंकि नीचे तो नहीं जा पाएंगे, प्रोग्राम है आज, हमारे विंग का भी प्रोग्राम है ग्राम विकास का ज्ञान सरोवर में, बहुत से वीआईपी जो वहाँ पहुँच रहे हैं, तो आप सबसे मिलने का भी मुझे चांस मिला। बाबा ने ज्ञान रत्नों से खेलना सिखाया है, शुरू से लेकर के आज करीब 50 साल मुरलियों की सेवा में हो गए। मैंने 73 में सब कुछ सीखा, मधुबन में ही सीखा, टाइपिंग सीखी, सिंधी भाषा सीखी और उसके बाद बाबा के पास बैठना, नोट करना, फिर उसको मुरली का रूप देना। अव्यक्त मुरलियाँ जितनी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सब इन्हीं उंगलियों से लिखी गई है। और 76 में पूरी डिपार्टमेंट मेरे हाथों में दादियों ने दी। 76 से लेकर के अभी तक जो भी ज्ञान खजाना, चाहे वो सिंध, हैदराबाद, कराची में मिला, चाहे भारत में, उन सब की खजानची बाबा ने बना दिया। इसलिए ब्राह्मण परिवार सदा सामने रहता है, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन की उन्नति का साधन केवल मुरली ही है, वही हमारी पढ़ाई है। मुरली पढ़ करके कोई तावसी तख्त ले लेता है, राजाओं का राजा बन जाता है, और मुरली से ही कोई नौकर चाकर दास दासी, पढ़ाई केवल एक ही है, पढ़ाने वाला भी एक, पढ़ाई भी एक, लेकिन उसे समझने वाले, उसको धारण करने वाले नंबरवार बन गए। तो सबसे मूल धारणा जिसको हमारे ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके सिखाया, उसके बाद हमारी दादियों ने प्रैक्टिकल करके सिखाया। इतनी बड़ी जवाबदारियां, इतना बड़ा यज्ञ, इतनी सब सेवाएं करते हुए भी कभी ये नहीं कहा मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, कराने वाला करा रहा है। हम सबको बाबा यही पढ़ाते हैं, बच्चे कभी भी कर्तापन का अभिमान ना आए। भले कितने भी श्रेष्ठ काम आप कर लो, करा ले कराने वाला, लेकिन मैंने किया, मैं करता हूँ, कहीं बुद्धि का अभिमान ना आ जाए, तभी नम्रता आएगी, निर्माणता आएगी। तो हमने अपने बड़ों को देखा है, उनको बहुत नज़दीक से सुना है, जानते हैं कि इतनी सारी जवाबदारियाँ, इतने बड़े यज्ञ को चलाया। दीदी दादी की जोड़ी आपने सुनी होगी, दीदी को किसने किसने देखा है, हाथ उठाओ। दीदी मनमोहिनी को, एक बैठे दीदी मनमोहिनी के, 83 जुलाई में दीदी ने शरीर छोड़ा था। दीदी यज्ञ की पहली पिल्लर बनी मम्मा के बाद। मम्मा अव्यक्त हुई 65 में और बाबा ने दीदी को दिल्ली से, दिल्ली में सेवा करती थी कमला नगर में, वहाँ से बुलाया और मम्मा की चारपाई पर, मम्मा की सेवाओं में, मम्मा के ही कार्य में उन्हें लगा दिया। तो दीदी बाबा के साथ राइट हैंड बन करके रही, बहुत अच्छी तरह से यज्ञ को संभाला, यज्ञ निवासियों को संभाला, कायदे क्या होते हैं, मर्यादाएं क्या होती हैं, एक एक बात में खुद करके फिर सिखाया, कह करके नहीं, और नम्रता का अवतार बन करके रही। इतनी नम्रचित, नम्रता होते हुए भी नियमों में कभी ढीलापन न किया न करने दिया। कोई ऐसे सोचे कि ये तो बड़े नरम हैं, बड़े सरल हैं, कुछ भी करो इनको क्या फर्क पड़ता है, कभी वो जोश में नहीं आएंगे, कभी बोलेंगे नहीं, लेकिन उनकी जो जीवन थी वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत थी। स्कूल नहीं गई, पढ़ाई नहीं की लौकिक में, बाबा ने कोशिश भी की बच्ची को सीख जाएगी, बाबा ही मेरा सब शिक्षक है, बाप शिक्षक सतगुरु स्वामी सतगुरु एक ही बाबा मेरा है, और इसी भावना से बाबा ने जो पढ़ाया जैसा पढ़ाया दीदी ने पूरा अपने जीवन में उतारा। बाबा की पढ़ाई को प्रश्न उत्तर में लिख लेना अपनी भाषा में, अपनी भाषा, उनकी राइट हैंड, उनकी जो राइटिंग थी ना, कभी कभी खुद भी नहीं पढ़ पाती थी, और हमें कहती थी देख मेरी अगर राइटिंग तुमने पढ़ लिया तो पास हो जाएगा, क्योंकि मैं सिंधी सीखी थी लेकिन दीदी का एक अक्षर भी नहीं पढ़ने में आता था, फिर भी बहुत नम्रता के साथ एक एक बात सिखाना, अपने साथ बिठाना, गाइड करना, और सदा इस क्लास में आने के समय डायरी पेन हाथ में, बिना डायरी पेन के कभी नहीं आई क्लास में, आगे आगे खुद कहती थी देखो घंटी बज गई सब आ जाओ क्लास के अंदर, टीचर के पहले क्लास में पहुंचना चाहिए। हम लोगों को नाइट क्लास, सवेरे अमृत वेले का योग, मुरली क्लास, इसमें इतना पक्का कर दिया हर नियम हर मर्यादा में कैसे रहना है कैसे चलना है। जैसे कोई बच्चे को माँ बहुत प्यार से एक एक चीज सिखाती है ना ऐसे, क्योंकि हम लोग तो बचपन में आए 15-16 साल की उम्र में कुछ भी पता नहीं था, भले बचपन में ही माँ बाप ज्ञान में आए तो 4 साल की उम्र से ही परिवार ऐसा ही मिला, लेकिन उसके बाद जब मधुबन में आए तो पता चला ईश्वरीय ज्ञान क्या है, पढ़ाई क्या है, मर्यादाएं क्या हैं, कैसे चलना है, कैसे रहना है, सब कुछ दीदी दादी ने माँ बाप बन करके माता पिता के रूप में सिखाया, एक एक बात पर ध्यान खिंचवाया, कहीं अलबेले न बन जाएं, कहीं सुस्त न बन जाएं, कभी कुछ बहुत अच्छी तरह से कहते ना नम्रता के साथ साथ बहुत प्यार से पालना दी, लॉफुल के साथ साथ लॉफुल थी, उल्लंघन करके यज्ञ में कोई नहीं रह सकता कोई नियम का, अगर रहता था तो उसको बहुत प्यार से बुला के कहती देखो सेवा करने के लिए तो नौकर भी रखे जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं ना यज्ञ में, लेकिन आपको ये भाग्य मिला यज्ञ में सेवा करने का भाग्य मिला, लेकिन सेवा के साथ साथ स्थिति पर भी ध्यान दो, स्थिति के लिए पढ़ाई ही है योग ही है। श्रेष्ठ स्मृतियां हमारी स्थिति को महान बनाती हैं, तो उन श्रेष्ठ स्मृतियों में हम कैसे रमण करें कैसे रहें, ऐसे ध्यान से प्यार से बुला बुला करके सिखाते थे। संग की संभाल करना, कोई व्यर्थ चिंतन करे पर चिंतन करे यज्ञ के बारे में, बड़ों के बारे में, मुरली के बारे में अगर कोई बहुत नुक्स निकालता है कमियां निकालता है तो उसके संग में नहीं बैठना, उसके संग में नहीं उठना, बात घूमने जाना, क्योंकि कुछ न कुछ कान में भूं भूं करेगा और आपकी अच्छी स्थिति को बिगाड़ देगा। तो ऐसे दीदी दादी ने इतने बड़े यज्ञ को इतने प्यार से पाला, बढ़ाया, आगे बढ़ाया हम सबको, और आज कहां से कहां यज्ञ पहुंच गया। लॉफुल, कभी भी अपने हाथ में लॉ नहीं लिया, बाबा बैठा है ठीक करे, बाबा बैठा है। इतने श्रेष्ठ कर्म, बाबा कई बार कहते हैं मैं अपने बच्चों के हाथों में भाग्य बनाने की कलम देता हूँ। आप सबके हाथ में है कलम, कौन सी है? जितनी लंबी रेखा चाहे खींच सकते हो, और वो है कलम श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म किसको कहा जाता है? श्रेष्ठता कहाँ से आई? क्योंकि दुनिया में भी कर्म के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। ये कर्म क्षेत्र है, और कर्म क्षेत्र पर कोई कहे मैं कोई काम ही नहीं करता, मैं तो कर्म सन्यासी हूँ, बाबा कहते कर्म सन्यास नहीं होता। जन्म लिया है, भोजन खा रहे हो, सांस ले रहे हो, इस वायुमंडल में चल फिर रहे हो, ये भी तो कर्म ही है। सिर्फ भोजन नहीं बनाया अपने हाथ से तो सन्यास हो गया क्या? तो बाबा ने हम सबको कर्म सन्यास नहीं सिखाया, कर्म योगी बनाया। और कर्म योगी जो कर्म करे उसमें कहीं कर्तापन का भान ना आ जाए, मैंने किया मैं करता हूँ, यही कर्म की कुशलता को नष्ट करता है। आप सब इस पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि करने का भाग्य सबको मिलता है। स्थापना बाबा ने यज्ञ रचा, और यज्ञ को संभालने की, यज्ञ को आगे ले जाने की सारी सेवा बच्चों के हाथ में दी। तो नई दुनिया बनाने के लिए स्वयं रुद्र भगवान ने ज्ञान यज्ञ रचा, और उस ज्ञान यज्ञ में ब्राह्मणों को सेवा का चांस मिला, भाग्य बनाने का चांस मिला। कोई ने तन की सेवा की, यज्ञ को संभाला, इतना प्यार से हर डिपार्टमेंट की सेवाओं में अपना सहयोग दिया। कोई ने मन से शुभ भावनाएं रखी, यज्ञ को सफल बनाने में अपनी श्रेष्ठ धारणाओं का योगदान दिया, और कोई ने धन से सहयोग दिया। सबके सहयोग से आज यज्ञ विश्वव्यापी बना है। चारों तरफ से बाबा के केंद्र खुले, छोटे बड़े यज्ञ बने, जिस यज्ञ में हम सभी, स्थूल कुंड तो नहीं है जहाँ अग्नि प्रज्वलित हो, लेकिन यज्ञ है जहाँ पर योग अग्नि जलती है, जहाँ पर हम अपनी कमी कमजोरी स्वभाव संस्कार पुरानी आदतों को स्वाहा करते हैं, स्वाहा स्वाहा, और जब उसकी आहुति दे देते हैं तो यज्ञ सफल हो जाता है। संपूर्ण आहुति जब पड़ जाती है तो ये कलयुग की सृष्टि परिवर्तन होकर सतयुग बन जाता है। तो उस यज्ञ में जिन्होंने भी सहयोग दिया, आप सभी भी तो सहयोगी है ना, सब सहयोगी हैं, किसी न किसी रूप में बाबा के यज्ञ को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन योगदान देने वाले उसका रिटर्न तो नहीं चाहते। जो निमित्त समझ करके योगदान देते हैं वो कभी रिटर्न की आस नहीं रखते। ब्रह्मा बाबा ने इस यज्ञ में कितना किया, क्या नहीं किया, लेकिन सब कुछ करके अपने आप को छिपा लिया। मैं कुछ नहीं करता, तो मेरा फोटो नहीं रखना। हमने कहा जिसने फोटो किया, इतना उस समय निकालने नहीं दिया, आज गली गली हर घर में बाबा के फोटो हो गए। इतना त्याग किया, एक बच्चे को भी, क्यों बच्चे किसका फोटो निकालते हो, शिव बाबा का फोटो निकलता है क्या? नहीं जरूरत है, कभी भी बाबा ने फोटो नहीं निकालने दिया। एक ही लास्ट में फोटो कैमरे वाले को बुला करके निकलवाया, वो फोटो वहाँ है हिस्ट्री हॉल में, दादा विश्व किशोर का। वो विदाई के रहे थे बाबा से, उनका ऑपरेशन होने वाला था छोटा, दोपहर का समय था, सब रेस्ट में थे। बाबा से छुट्टी लेके रमेश भाई के साथ वो जा रहा था, तो बाबा ने कहा बच्चे फोटोग्राफर को बुलाओ। आज बाबा फोटोग्राफर को याद किया, फिर बुलाया तो तीनों ने, बिस्किशोर दादा, रमेश भाई और बाबा, तीनों का फोटो एक साथ। शायद बाबा को भी, वो तो जानते थे, जाने जाना नार थे कि बच्चा अभी वापस आने वाला नहीं, छुट्टी लेके जा रहा है, तो वो फोटो बाबा ने निकलवाया। न मान की इच्छा, न शान की इच्छा, न वस्तुओं की इच्छा, हर इच्छा को त्याग करके बच्चे कर रहे हैं या बाबा कर रहा है। इतनी निर्माणता सब कुछ करते हुए भी कभी अपनी महिमा स्वीकारने की। बाबा आज आपने बड़ी अच्छी मुरली सुनाई। बाबा ये बच्चे मैंने थोड़ी सुनाई, शिव बाबा सुना के चला गया। मेरे से भी अच्छे मेरे बच्चे मुरली सुनाते हैं, क्लास कराते हैं। अपनी महिमा कभी नहीं कराई, बहुत गुप्त रीति से। इतना बड़ा यज्ञ बाबा की बिजनेस का पैसा था, हीरे जवाहरात की दुकान समेटी गई। और उसमें पता है क्या हुआ था, जब बाबा ने उस भागीदार को बोला कि भाई मुझे बिजनेस नहीं करना अभी, तो वह घबरा गया। कहता है बाबा आप ही तो परखने वाले हैं, आप जवेरी हैं, आप नहीं करेंगे तो मेरे से तो बिजनेस चलने वाला नहीं, मैं तो जानता नहीं हूँ हीरे सोने को, उसकी वैल्यू को। तो बाबा ने कोई बात नहीं, तुमको जो करना है करना, मुझे नहीं करना। और बिस्किशोर दादा जो उनका भतीजा था साथ में, उसको बोला तुम इससे बात कर लेना, जो दे ले लेना, छुट्टी कर देना। तो बाबा चला गया। तो दादा ने उससे जब बात किया तो बोलने लगा, दादा जवाहरात लेके मैं क्या करूँगा, आप मुझे पैसा इसका हिस्सा दे दो। पैसा दे दिया उसको और जवाहरात लेकर के जो भी थी हीरे जवाहरात जो भी था बाबा का, वो सब लाकर में रखवा दिया, बैंक में रखवा दिया। और उसके बाद उसकी कीमत जो बढ़ती गई, 14 साल तक यज्ञ चला बाबा की प्रॉपर्टी से। कुछ परिवार और भी थे, 2-3 हमारे चंद्रमणि दादी के पिताजी थे, शांतामणि दादी के पिताजी थे, ये सब ज्वेलर थे। दादा आनंद के सोर थे, 4-5 ज्वेलर थे जो समर्पित हुए यज्ञ में, वो भी अपनी प्रॉपर्टी से समर्पित हुए। लेकिन बाबा ने कभी इसका वर्णन नहीं किया कि 14 साल मैंने 400 बच्चों की पालना की। मैंने नहीं की, शिव बाबा ने किया, वो कराने वाला है। इसलिए तो श्री लक्ष्मी को भी धन देने वाला धनदाता बन गया, श्री नारायण का पद पा लिया। आप समझ सकते हो पद कैसे मिलता है, भाग्य कैसे बनता है। कभी कहीं भी कोई बात, न मान न शान न महिमा न वस्तुएं, कुछ नहीं चाहिए। कोई ने अगर दिया भी, ऑफर भी किया, बाबा तो पुराने जुत्ती में आया है, पुराने तन में शिव बाबा आया है, इसको नया कुछ नहीं चाहिए। ये जो हवाई महल है ना, ये बाजू वाला बिल्डिंग बाबा ने अपने हाथों से बनवाया। और बाबा उसी 3 सीट पे शुरू से, जब से यहाँ आए पांडव भवन में, उसी 3 सीट में रहे। और बाबा का लेट्रिन बाथरूम वहाँ, जहाँ पर वो बाथरूम उस समय बने ना, वहाँ पर ऐसे कनात लगी थी, ऊपर छत नहीं थी, कनात थी, और वहीं पर बाबा खुले में जाके स्नान करते थे। बाबा को बच्चे कहे, बाबा आपकी आयु बड़ी हो गई है, ठंडी बहुत पड़ती है, बरसात पड़ती है, ये पानी टीन सब टपकती है, आप इस हवाई महल में आ जाओ, एक कमरा आप ले लो। अरे ये बच्चों के लिए बनाया है, बच्चे इसमें रहेंगे, बाबा को तो वही पुरानी कुटिया में रहना है। ये कुटिया जो बनी है, ये वो होते ना इसके खजूर के जो पत्ते पौधे ऊपर के खजूर के झाड़ के पत्तों की थी, अभी तो उसको स्थायी रूप देने के लिए ऐसा बना दिया। हम जब आए 71 में भी वही थी, उसके बाद बनाई गई। तो बाबा कितने नम्रचित, निर्माणचित, निरहंकारी बन करके रहे, कोई अहंकार नहीं, कहीं दिखावा नहीं। मैं तो बच्चे ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, आज्ञाकारी सेवाधारी हूँ, जो आज्ञा बच्चों की, जो आज्ञा। चलो साकार में तो बाबा ने अपने आप को बहुत नम्रता के साथ सब को त्याग करके अपने को चलाया, लेकिन अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त वतनवासी बने, दीदी दादी के ऊपर कलश रख करके फिर कहा, बच्चे जब बुलाओगे, जो आज्ञा करोगे, बाबा आपके साथ रहेगा। दीदी दादी ने बाबा को अव्यक्त होने के बाद भी इतना यूज किया, जब भी कुछ समय आया कोई भी बात पूछनी हो, क्यों कुछ नहीं करना अपने आप, बिना बाबा की छुट्टी के, बिना स्वीकृति के एक कदम आगे नहीं बढ़ना। साकार में जितनी वाणियां चलाई हैं, जो कुछ बाबा की आशाएं थी मुरलियों में, वो सब पूरा करना है, लेकिन बाबा से पूछ करके। विदेश में जाना है, सेवाएं शुरू करनी है। मुझे याद है हिस्ट्री हॉल में गुलजार दादी को बिठाया और कहा, बाबा विदेश का निमंत्रण आ रहा है, जाएं, भेजें किसी को। बहुत सारे प्रश्न थे। बाबा आए 71 में, मई जून में बाबा आए, और बच्चों के अंदर को पढ़ने वाला तो है, जानता है तो सब बात है। बच्चों के अंदर एक प्रश्न था, हलचल थी। विदेशी लोग तो ठंडी बहुत होती है, सवेरे तो उठते नहीं हैं, स्नान भी कभी कभी करते हैं, वो तो बिना शराब के, बिना मांसाहार के रह ही नहीं सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा इतना ऊंचा ज्ञान, इतनी ऊंची धारणाएं, कैसे फॉलो करेंगे, कैसे सुनेंगे, कौन आएगा। बहुत सारे प्रश्न थे आपस में विदेश सेवा शुरू करने के पहले। और बाबा जब आए तो पहले पहले पूछते, बच्चे तुम जहाँ जाना चाहते हो सेवा पर, वहां की सेवा की है? बाबा जाके सेवा करेंगे ना। अरे बच्चे जाके क्या सेवा करोगे, यहां बैठे बैठे पहले उनको इमर्ज करो। जो अपने घराने के बच्चे बाबा के हैं वो सब आ जाएंगे, लाइन लगाएंगे, भाग भाग के आएंगे। कभी नहीं सोचना कैसे आएंगे, कहां से आएंगे। जहां ब्राह्मणों के कदम पड़ेंगे वहां ब्राह्मण बच्चे निकलेंगे, आप जाओ। नेगेटिव नहीं सोचना, यहां से सेवा करो, पहले से शुभ भावना से उनका आह्वान करो। गए, देखा, जैसे कोई चात्रक बैठे होते हैं ना पंछी। आप हम सब यहां पर सोचते हैं भी, सवेरे सवेरे कौन अमृत वेले सेंटर पर जाएगा। दादी जानकी जब 74 में यहां से गई हैं, उन्होंने अमृत वेले का योग कंपलसरी कर दिया सबके लिए, 4 बजे सेंटर पर। साफ ठंडी में बर्फ पड़ी हुई है, सब भी गाड़ियां ले लेकर के सेंटर पर पहुंच रहे हैं। 4 बजे का योग शुरू करा दिया, रेगुलर पंचुअल क्लास बना दिया। जब मैं 2 बार लंदन गया, मैंने देखा एक एक क्लास में जब इकट्ठा होते थे 700 लोग। भारत के अंदर हम इतनी सेवाएं कर रहे हैं, कहां इतना कोई क्लास संगठन मिलता है, उसमें आधे विदेशी आधे भारतवासी। गुजराती अधिक, वहां गुजरात वाले ज्यादा लंदन में थे। मैंने कहा कहां से, देखो बाबा ने बीज डाला और दादी ने ऐसी पालना की, ऐसी पालना की जो इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा संगठन तैयार किया। 60 एकड़ में रिट्रीट सेंटर बना दिया ऑक्सफोर्ड में। अमेरिका गए, वहां 300 एकड़ में बनवा दिया पीस विलेज। करण करावन हार बाबा करा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, जो निमित्त हैं वो कभी अपना रूप नहीं दिखाते हैं। दादी ने किया, मैंने किया, मैंने किया, बाबा करा रहा है। करण करावन हार स्वामी, जहां करतापन आया वहां पर कहीं ना कहीं मैल आ जाएगी, मेरापन आ गया। बड़ों ने कभी नहीं सोचा ये मैंने किया है, कहीं उनके मुख पर भी नहीं आया कि मैंने यहां सेंटर खोले, मैंने डायमंड हाउस बनाया, मैंने ग्लोबल हाउस बनाया। दादी जानकी ने कभी नहीं कहा होगा, लेकिन लंदन में सब तरफ एक से एक बड़े बड़े भवन बाबा के। इतनी सेवाएं करके, इतना सब कुछ सेवा में बाबा को प्रत्यक्ष करके, कभी अपना नाम मान शान महिमा स्वीकार ही नहीं की। कोई ने किया रे तुम किसकी करता है। एक दिन की बात है, दादी के पास मैं जाता था, क्योंकि दादी 3-4 साल ऊपर नहीं आ पाती थी, थोड़ा ऑक्सीजन के कारण, तबीयत के कारण डॉक्टर छुट्टी नहीं देते थे। तो हम लोग कहते तुम रोज जाओ ऊपर समाचार देखना सुनना, और फिर आके सवेरे मेरे को बताना। तो हम शाम को 4-5 भाई ऐसे आते थे रेगुलर ऊपर, और सवेरे सवेरे जाते थे। तो एक दिन ऐसे आंख बंद करके बैठे थे, तो मैं बैठ गया जाकर के बाजू में। हमने कहा जब आंख खोलेगी तब बात कर लूंगा, ऐसे बैठे थे। फिर देखा है तो खोल ही नहीं रही, हमको तो जाना आगे भी सेवा है। तो मैंने हिलाया थोड़ा, दादी अच्छा तुम आ गए ऊपर से, ज्ञान सरोवर ठीक है। पहले ज्ञान सरोवर याद किया, म्यूजियम ठीक है, पांडव भवन में सब ठीक है, तो सब बात तो मैं, हमने कहा हाँ जी हाँ दादी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सब ठीक चल रहा है। अब दूसरा प्रश्न और मालती है, कहती है कैसे चल रहा है। तो जब कैसे कहा तो मुझे बाबा की बात याद आ गई। मैं बाबा, बाबा ने कहा, दादी बाबा ने कहा है कि एक दिन आपके शुद्ध संकल्पों से सारा यज्ञ चलेगा। तो आप जो यहां बैठी है ना, आप कितनी शुभ भावनाएं हैं, शुद्ध संकल्प हैं, इन संकल्पों से सारा यज्ञ बहुत अच्छा चल रहा है। बस ऐसा मैंने कहा था, क्या बोलता है, मैंने फिर रिपीट किया, मुठा भूल गया तुम, मैं कर रही, मेरे शुद्ध संकल्प से चल रहा है, बाबा के शुद्ध संकल्प से चला, शुद्ध संकल्प से चला, ये भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, मेरे शुद्ध संकल्प से, मैं कौन होती हूं, एक भी क्लास में, एक भी पत्र में दादी ने मैं शब्द को यूज नहीं किया, थर्ड पर्सन दादी का विचार है, दादी ऐसे, मैं दादी कोई दूसरी है क्या, थर्ड पर्सन बोल रहा है क्या, कभी नहीं कहा मैंने किया, मैं करती हूं, मेरे हैं, मेरी जवाबदारी, बाबा बैठा है, बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं, वो करावन आ रहे, उसने हमें निमित्त बनाया है, हम एक्यूरेट रहे, हम ठीक रहे, बाकी कराने वाला वो करा रहा है, सब किया, इतना बड़ा कार्य है। लास्ट में धुन लगा दी, एक दिन मेरे को बुलाती है, कहती है मेरे को बाबा कहता बच्चे एक एक लाख का प्रोग्राम होना चाहिए, तुम पत्र लिखो ऐसा। दादी हंसने लगा, मैं दादी विचार तो आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन एक लाख हमारे प्रोग्राम में कहां से आएंगे, 5,000 भी मुश्किल से आते हैं। फिर मीटिंग किया, मीटिंग में भी सबने यही कह दिया, दादी कोई एक्टर थोड़ी है यहां आते जिसको देखने के लिए लोग आ जाएंगे, हमारे प्रोग्राम में 1,00,000 कहां से आएंगे। दादी कहती है मुझे तो आता है, बाबा बार बार कहता है बच्ची बड़े प्रोग्राम करो, मेगा प्रोग्राम करो, तुम लोग समझो ना मेरी बात को। तो सहला दीदी थी गुजरात की, उनका बहुत दादी से प्यार था, वो कहती है दादी आप कहती हो तो मैं पहले अहमदाबाद में करूंगी। दादी इतना खुश, अच्छा तुम करके दिखाओ मेरे को, मैं आऊंगी, तीनों दादी आएंगी, दादी जानकी दादी और गुजरात दादी, तीनों आएंगी, आप करो बड़ा प्रोग्राम। पहला मेला, जो पहला प्रोग्राम मेगा प्रोग्राम हुआ, उसमें 2,00,000 लोग इकट्ठे हो गए, और दादी के लिए मचान बनाया था बहुत ऊंचा, पहले तो रथ पर घुमाया पूरे मैदान में, जहां जहां बैठे थे हम लोगों को सबको भेजा, जाओ मधुबन वाले सब जाओ, और जब घुमा दिया रथ पर, उसके बाद ऊपर जब मचान पर चढ़ी तो तीन ही थी, चौथा कोई नहीं था, गुलजार दादी, जानकी दादी और दादी प्रकाशमणि। इतना अच्छा भाषण किया, इतना खुश किया सबको स्टेज से, बस धुन चढ़ गई, अभी तो सब स्टेज पे होना चाहिए, कोई स्टेज में नहीं छोड़ूंगी, सब जो स्टेज थोड़ा बहुत कहे दादी बहुत खर्चा होता है, क्या करेगी, शरीर छोड़ जाएगा, बैंक में रह जाएगा, कर लो जो करना है, बहुत प्यार से सबसे करवाया। सुना है, देखा होगा जिन्होंने मेगा प्रोग्राम, एक से एक करके, कहीं 50,000, कहीं 1,00,000, कहीं सब जगह पूरी स्टेट में हुए, एक शुभ संकल्प, एक पवित्र संकल्प उनका, कितना बड़ा कार्य। फिर लास्ट में बुला के कहती सारे भारत वालों ने कर दिया, मधुबन वालों ने कुछ नहीं किया, मधुबन वालों को जाना चाहिए गांव गांव में, दादी यहां गांव ही नहीं है, ये तो सब एक एक अलग अलग राजस्थान वाले कमरा बना के बैठे हैं, मैं नहीं जानती, ये हमारे पड़ोसी हैं, आदिवासी भले हैं लेकिन सब पड़ोसी हैं, सबको बुलाओ और कहो दादी याद कर रही है, दादी तुमको ब्रह्मा भोजन खिलाएगी, भाषण सुनाने के लिए नहीं, ब्रह्मा भोजन खिलाएगी, जाओ सब लोग गाड़ियां ले लेकर के पूरे राजस्थान में चारों तरफ से जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं घूम जाओ, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में सब गए, सबको निमंत्रण दिया, और सब भील ग्रासिया जितने इस साइड में रहते ना आदिवासी क्षेत्र, सब आ गए दादी के निमंत्रण पर, करीब 45,000-50,000 की सभा हो गई, डायमंड हॉल के चारों तरफ वही सब दिखाई दे रहे थे, और दादी इतना फुस इतना नशे में, अरे अच्छा ब्रह्मा भोजन बनाओ, मैं इनको सौगात अपने हाथ से दूंगी। दादी इतने लोगों को आप सौगात नहीं देंगे, आए हैं बच्चे हैं बाबा के, जरूर इनको सौगात देनी चाहिए। दो सौगात शुरू कर दिया अपने हाथ देना, सौगात भी दी, ब्रह्मा भोजन भी कराया, माना क्या नहीं उन्होंने यज्ञ के लिए किया, लेकिन करते हुए भी अकर्ता रहे, निमित्त भाव निर्माण भाव कभी मुख से नहीं निकला मैंने किया, ऐसी नम्रता है। आज थोड़ा कोई सेवा करता है, मेरा फोटो नहीं छपा, मेरा ये नहीं हुआ, इन्होंने मेरे को समझा ही क्या है, सबके फोटो छाप देते हैं, मेरा क्यों नहीं छापते है? मान शान महिमा नाम क्या उसके पीछे भाग रहे हैं, उसको नम्रता कहते हैं क्या? बाबा करा रहा है, करण करावन हार स्वामी है, जिससे भी कराना चाहे करा लेगा, अगर मैं कहूँ मैं नहीं करूँगा, या तुम साइड होके देख कैसे हो जाता है। इतना बड़ा यह कि चलाया ना उसने, आज कोई अपना अहम दिखाए कि मैं अगर यहाँ नई मकान बनाऊंगा तो कोई नहीं बनाएगा, तो बाबा का मकान नहीं बनता है क्या? किसी के आधार पर बाबा ने कहा, बहुत नशा था, ऊंचा नशा था, सम्मान था, बच्चे ये दूल्हे लाल का घर है, दूल्हे लाल का कुआं है, मुरली में कभी किया था, दूल्हे लाल का कुआं है। तो कभी कभी साकार में ब्रह्मा बाबा जब थे ना, तो कोई कोई आके पूछते थे, बाबा खर्चे तो बहुत हैं, आप कहते हो कोई से मांगना नहीं, कोई से लेना नहीं, ये इतना बड़ा यज्ञ चलेगा कैसे? अरे बच्चे, बाबा के पास दूल्हे लाल का कुआं है, उससे पैसा निकलता है, पानी नहीं निकलता पैसा निकलता है। कहाँ है कुआं? वो नया नया कुआं यहां बना था, इधर खोदा था, अरे देख कुल्हे दूल्हे लाल का कुआं है, जिसके इतने बच्चे कमाने वाले हैं, सब करने वाले हैं, उस माँ बाप से पूछते हो तो खर्चा कैसे चलता है? सब बच्चे कमा रहे हैं, आज इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है। दादी से कोई कोई पूछता है, दादी ज्ञान सरोवर कैसे बन गया इतना बड़ा? एक रुपए से ज्ञान सरोवर बन गया, अखबारों में एक रुपए से ज्ञान सरोवर बन गया, एक रुपए से दादी ज्ञान सरोवर कैसे बनेगा? अरे बाबा को 3 लाख, उस समय 3 लाख बच्चे थे, अभी तो 14 लाख है, 3 लाख बच्चे अगर तीन एक एक रुपया निकालते हो, 3 लाख रोज का आता है, और हमारी बहनें इतनी ईमानदार हैं, जो एक रुपया भी अगर कोई भंडारी में डालता है तो वो इकट्ठा करके हमें मधुबन में भेज देती सेवा के लिए। सबके सहयोग से ज्ञान सरोवर बन गया, और एक एक रुपये का रोज सहयोग दिया, 1.5 साल सहयोग आया और बन गया, क्या बड़ी बात है। मतलब सब कुछ किया कराया, और कराते हुए भी बाबा ने कराया, शुक्रिया बाबा तेरा। यहाँ पर हम लोगों ने जब ओम शांति भवन बनाया ना, एक भी मिस्त्री नहीं, एक भी इंजीनियर नहीं बाहर का, सर्व मधुबन वाले शाम को वहीं चाय पकौड़ा बनाएंगे खाएंगे, सब चाल पत्थर तोड़ो उठाओ, दादी खुद खड़ी है तगारी उठाने के लिए, तैयार हो गया बन करके। दिसंबर में कहती है, फरवरी में इसका उद्घाटन करना है, दीवार नहीं बनी हुई है, डेट दे दिया, और उद्घाटन में नाम आने लगे, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन का आएगा, बड़े बड़े वीआईपीज की लिस्ट आने लगी, और यहां कोई तैयारी नहीं। आए बाबा के बच्चे, दिन रात लग करके, लास्ट में 5-6 दिन बचे थे, टैस नहीं लगी थी, मुझे टैस लगा दो, अभी तक वही लगी है टैस, बदली नहीं है, लाल पत्थर लगा दो। निर्भर भाई एक बार गए बाबा के पास, बाबा बोला, बाबा थोड़ा संगमरमर लगवा दे, संगमरमर नहीं बच्चे, कुछ जरूरत नहीं है, एक पत्थर नहीं लगाने दिया संगमरमर का, मुगजल टाइल लगा दो। और जब हो गया उद्घाटन 8 फरवरी को, तो उसमें दादी ने बोल दिया था, हाल तो 3000 का है, और मधुबन में रहने वालों की केवल 300-400 लोगों की व्यवस्था है, तुम लोग सारा आबू बुक कर दो, कोई भी कमरा बाहर वालों को नहीं, सारा ब्रह्मा कुमारी का। 3000 से ऊपर लोग आए, सब आराम से रहे, सबका हिसाब किताब किया, लास्ट में कहती है, अरे बूढ़ा बाबा है बड़ा चतुर है, हम लोगों के क्लास में कहती है मधुबन वालों के, ये बूढ़ा बाबा बैठा ना बड़ा चतुर है। अरे दादी क्या चतुराई किया? देखो इतना बड़ा हाल बनवा दिया, इतने सब बच्चे बाबा के आए, इतना सेवाएं हुई, इतना विस्तार हुआ, और तुम लोगों ने जितना खर्चा किया ना उतना ही भंडारी में आया, न एक रुपया कम आया न एक रुपया ज्यादा आया। तो ये भोला नाथ चतुर्भुज है ना, बूढ़ा बाबा बैठा ऐसे रमणीकता से हंसते बैलते यज्ञ को कहां से कहां पहुंचा दी, इतनी निर्माणता। मैंने कुछ नहीं किया, किसी को नहीं मैंने मांगा। ये बूढ़ा बाबा सत्यनारायण स्वामी बैठा है, अपने आप सब कुछ कर रहा है, करा रहा है। वो अपने को नहीं कहता मैं कर रहा हूं, वो कहता शिव बाबा कर रहा है, दादियां कहती ये करवा रहा है। क्या है, यही तो नम्रता है, यही तो निर्माणता है। अब ऐसी निर्माणता अगर हमारे जीवन में आ गई तो जितने टकराव हैं, जितने मन मुटाव सब मिट जाएंगे। किसके लिए हम कर रहे हैं, किस क्या चाहिए हमको? अगर हमारी वाणी में निर्मलता नहीं है, सरलता और मधुरता नहीं है, माना हम अपने को निमित्त नहीं समझते, जरा भी कोई करने का, बुद्धि का, सेवाओं का, अपनी योग्यताओं का अहंकार अगर किसी को आ गया, उसकी वाणी में फट से दिखाई देता, कितना रोब से चलता है, क्या इसको मिल गया है पता नहीं। बाबा को देख, बाबा देख करके पहचान जाता था, इसको किस चीज का नशा है, क्या चाहिए इसको। बाबा ने अहंकार को तो मारा, कहते योगी वो है जिसने अहंकार को मारा, लेकिन योगी वो है जिसने सूक्ष्म रोब को भी खत्म किया। रोब से भी नहीं चलना, झुक करके सरलता से, नम्रता से, मधुरता से, तभी कहेंगे नम्र चित्त है, नम्रता का अवतार है। कई बार बाबा की मूलियां चलती है, नम्रता तुम बच्चों की सेफ्टी का कवच है, पहन करके रखो। क्या बात है, बड़ी बात है। अगर कहीं हो गई, टकराव की स्थिति बन गई, तो दादी कहती थी हार मान लो, हारमनी हो जाएगी। हार मान लो ना, एक सेकंड के लिए झुक जाओ, ठीक हो जाएगा सब। नहीं, मैं कोई गलत थोड़ी हूं, मैं तो बिल्कुल राइट हूं, मैं क्यों झुकूं, मुझे ही झुकना है क्या। बस वहां टक्कर शुरू हो गई। बाबा ने कभी भी हम बच्चों को ऐसी शिक्षाएं नहीं दी कि टक्कर में आओ, बहुत नम्रता से, सरलता से, मधुरता से बाबा को प्रत्यक्ष करो। वाणी बड़ी निर्मल हो, बड़ी मधुर हो, नहीं तो जहां पर भी टकराव पैदा होते हैं हमने देखा, कहीं ना कहीं थोड़े से कटु वचन निकल जाते हैं, किसी न किसी के प्रति कमियों को देखते हैं, नोट करते हैं और कुछ न कुछ बोल देते हैं। इसलिए ध्यान देना, सभी ध्यान देना। परिवारों में भी दो टुकड़े क्यों हो जाते हैं, शादी करके आई बहू आई घर में, अलग चूल्हा जल गया। जिस लक्ष्य से माँ बाप ने बच्चों की शादी की, वो बेचारे बान प्रस्थी बूढ़े घर में चले जाते, क्या घर बन गए आज। इसलिए थोड़ा सा झुक करके चलना, नम्रता से चलना, बहुत निर्माण होकर के चलना बाबा ने हम सबको सिखाया। अगर किसी के घर में टकराव पैदा हो रहे हैं, भले ज्ञान चले ज्ञान में न चले, एक चलता है दूसरा नहीं चलता, जरूर टक्कर तो होगा, लेकिन उस टक्कर में भी अगर कोई बड़ा सरल चित होकर के उसको सम्मान दे करके चलते, सब सहयोगी बन जाते, कोई विरोध नहीं करता। हमारी धारणाएं हैं, हमारे नियम हैं, वही नियम वही धारणाएं अगर सरलता के साथ, बहुत मधुरता के साथ बताई जाती। आजकल कोई कोई कुमार ज्ञान में चलते हैं, जिस माँ ने जन्म दिया, जिसने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, इतना उल्टा नशा चढ़ जाता है, मैं तो अभी ज्ञान में चलता हूं, तेरे हाथ का नहीं खाऊंगा, बस शुरू हो जाता है। क्या ब्रह्मा कुमारियां ज्ञान देती हैं, हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया, मेरे हाथ का भी नहीं खाता। अब बाबा ने सिखाया है क्या? बाबा कहता बड़े बच्चे बहुत युक्ति से, बहुत प्यार से उसको और अच्छी तरह से समझाओ कि माँ मुझे शुद्ध खाना पड़ता है, मैं थोड़ा मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा स्नान पानी करके बिना लहसुन प्याज वाला बना के दोगे, तुम खा लेंगे। पहले धीरे धीरे सुनाना है ना, सीधा ही आकर के ठोक देना ज्ञान को। समझाने की भी विधियां हैं, युक्तियां हैं, और अपने घर में कम से कम फूट न पड़े, घर में झगड़े न हो, कभी ये लोग न कहें क्या ये ब्रह्मा कुमारी में गया और बिगड़ गया। बदनामी तो बाबा की होती है ना, बाबा ने सिखाया नहीं है, लेकिन जब किसी को बहुत जोश आ जाता है, नशा चढ़ता है उल्टा ज्ञान का, हर घर में ठकरा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। इसलिए बहुत नियम मर्यादाओं में लूज होने की बात नहीं है, लेकिन वही नियम, मान लो आज कोई को शुगर हो जाती है, कोई को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, डॉक्टर उसके लिए कहता है प्लीज इसको टच नहीं करना, मीठी चीज नहीं खाना, आपको कितना भी कोई जबरदस्ती खिलाए खाओगे क्या? हमारे डॉक्टर ने भी मना किया है नहीं खाना, हम नहीं खाते हैं लेकिन टक्कर नहीं लेते। हाँ ठीक है भाई, हमारी बीमारी कारण, हमारे मेडिटेशन के कारण हम परहेज से चलते हैं, चलो ये चीज नहीं, आप ये चीज दे दो, हम पकी हुई नहीं ले रहे इस समय, हमको आप फल दे दो, हम फल खा लेंगे। अगर कोई सेटिंग करना चाहे तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन जो उसमें आकर के नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊं, वो समझते पता नहीं कहां हम अछूत हो गए, क्या हमारे खाने से इनका बिगड़ जाएगा। हमारे नियम हैं, मर्यादाएं हैं, हम पालन भी करते हैं लेकिन टक्कर नहीं लेते। तो नम्रचित आत्माएं बहुत झुक करके चलती हैं, सरलता से चलती हैं, सबको साथ लेकर के चलती हैं। इसलिए सभी ध्यान देना, नम्रता हमारा कवच है और वही इस समय सेफ्टी का साधन है, उसको पहन करके रहो। जैसे पहले जमाने में युद्ध के मैदान में जब जाते थे, अभी तो बुलेट प्रूफ आ गया, साइंस ने अलग साधन बना दिए, पहले जब तलवार से या भालों से युद्ध करते थे तो लोग अपने जॉकेट के नीचे, अपने कुर्ते के नीचे एक बुलेट प्रूफ ड्रेस पहन लेते थे, कवच जिसको कहते थे, वो कवच पहन लेते थे, फिर कोई भी वार करे उन पर वार नहीं होता था। बाबा ने भी अपने बच्चों को नम्रता का कवच पहनाया है, पहन के रहो, कोई कुछ भी कहेगा आपके ऊपर असर नहीं होगा, आपका मन खराब नहीं होगा। तो निमित्त भाव से चलना, डबल करावनहार की स्मृति, एक शिव बाबा करा रहा है, उसका कार्य है, होना ही है, कभी निराश उदास हताश नहीं होना, कराने वाला करा रहा है। हमारा साथी कौन है? स्वयं सर्वशक्तिमान बाप, हजार भुजाओं वाला, वो कराने वाला करा रहा है। बाबा का कोई कार्य रुकने वाला ही नहीं, कोई भी कहे ऐसा कैसे होगा, अगर उसकी प्रेरणा है वो कह रहा है वो जाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, तो हमेशा ध्यान रखना, एक बाबा हमारा करावनहार मुझ आत्मा को निमित्त बना के करा रहा है, और दूसरा मैं आत्मा निमित्त करावनहार बनकर इन कर्म इंद्रियों से करा रही हूं। एक कर्म इंद्रियां अलग है, मैं अलग हूं, कर्म इंद्रियों के अधीन होकर के कोई कर्म नहीं करना, क्योंकि जितना कर्म इंद्रियों से गलत काम हो रहे हैं उसका कारण एक हो गया। उसका कारण क्या है? मन और कर्म इंद्रियों की दोस्ती हो गई आपस। आत्मा मालिक है, उसके साथ विवेक है, वो विवेक उसको मना कर रहा है नहीं करो, ये राइट नहीं है, लेकिन कर्म इंद्रियों के साथ इतना हिल मिल गया, जो कर्म इंद्रियों में सुख है उसको भोगने लगा मन। इसलिए बाबा कहता है मन के मालिक बनो, मन के राजा बनो। साकार में बाबा ने कहा माया जीत जगत जीत बनो, जब बाबा ने देखा माया जीत बनने के पहले इनका मन बड़ा चंचल है, फिर कहा मन जीते जगत जीत, पहले मन को थोड़ी जीता जाता है। अब हम सब इस पर ध्यान दें, आत्मा की तीन शक्तियां जो हैं इनका हम प्रयोग करें। मन आत्मा की प्रथम शक्ति है, संकल्प शक्ति, उस संकल्प शक्ति में मैं ना आ जाए, संकल्प शक्ति के साथ जो विवेक शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, उसकी सुनने के अभ्यास करो, एकांत में बैठो, बाबा की टचिंग के पहले आपका विवेक आपके साथ है और वो हमेशा राइट बात करता है, लेकिन मन इतना शक्तिशाली है जो उसको दबा देता है। बाबा इसको कहते अपने आप का वो खून कर लेता है, बुद्धि की सुनता ही नहीं, विवेक की सुनता ही नहीं है, और कर्म इंद्रियों के अधीन होके कहता है नहीं करते तो अच्छा होता, बोल दिया निकल गया हो गया। बाबा कहता तुम ज्ञानी है क्या? ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? ज्ञानी वो है जो सोचने के भी पहले सोचता है, बोलने के भी पहले सोचता है, करने की भी पहले सोचता है, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। और अज्ञानी है, कर लिया बोल दिया निकल गया, फिर कहता नहीं बोलते तो अच्छा था, ठीक नहीं हुआ, बिगड़ गया सब। बाबा तो ज्ञान किस लिए मैंने दिया? आत्मा परमात्मा का ज्ञान इसलिए मिला है क्या? ज्ञान दिया है आत्मा को मालिक बनने का, अधिकारी बनाने का, लेकिन दूसरों के मालिक नहीं, स्वयं के मालिक बनो। क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या सोचना है, क्या करना है। पहले कहते थे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, और अब बाबा ने कह दिया पहले थिंक नो इविल, फिर डू नो इविल। सोचना भी इविल नहीं, और सबसे बड़ा इविल क्या है? सबसे बड़ा इविल है देह के बारे में अधिक सोचना, रूप रंग के बारे में अधिक चिंतन करना। और सबसे बड़ी मेहनत ब्राह्मण जीवन में यही है कि हम आत्माभिमानी बन जाए। जितने विकर्म, जितने पाप कर्म हो रहे हैं वो सब देह मान के कारण हो रहे हैं, बॉडी कॉन्शियस के कारण। बाबा ने पाठ पका, बच्चे अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, पक्का कर लो पाठ। इन कर्म इंद्रियों को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं करावन हार हूं, ये कर्म इंद्रियां मेरी हैं। अपने आप कहीं नहीं पहुंच जा सकता, अपने आप कहीं हाथ नहीं चल सकता, जैसा मैं सोचूं, जैसा मैं कहूं वही करेंगे। ये मालिकपन राजयोगी आत्माओं को ही मिलता है। ऐसा योग करो, ऐसी भट्टी करो जो बाबा की हो सकती है। भले हम कमजोर भी हैं, बाबा कहते बार कहते हैं ना, बच्चा मेरा कमजोर है, मैं तो सर्वशक्तिवान हूं ना, तुम मेरे साथ कनेक्शन रखो, मैं तुम्हें वो बल दूंगा, वो शक्ति दूंगा जो तुम कभी भी अपनी कर्म इंद्रियों के अधीन नहीं होगे। कर्म इंद्रियां आपके आर्डर प्रमाण काम करेंगी। तो वर्तमान समय हम सबको स्वराज्य अधिकारी बनना है, मालिक बन करके रहना है, और अपने संगठन में, अपने परिवार में, अपनी सेवाओं में बहुत नम्रता के साथ झुक करके, सॉरी करके, ठीक हो जाएगा। कोई भी बात मान लो आपको बहुत कहता है, ऐसा तुमने किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसे किया, और तुम अपने को सिद्ध करो, नहीं मैंने नहीं किया, मैं जो कर रहा है बिल्कुल राइट है, टकराव पैदा हो जाएगा। जो नम्रचित आत्माएं होती हैं वो कहती है ठीक है, अच्छा अगर मान लो आप समझते हो गलत है, सॉरी, आगे के लिए ध्यान रखेंगे। झगड़ा टूट गया ना, खत्म हो गया उसी समय बात। लेकिन कई बार इतना जिद में आ जाते हैं, जिद्दी होते हैं, वो फिर सिद्ध करने लगते हैं। और कई बार बाबा कहते हैं बच्चे सत्यता को सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, सच्चाई हो ना, आप सच्चे रहो, बस ईमानदार रहो। सच जो है उनको थोड़ा सहन तो करना पड़ता है, क्योंकि झूठ का जमाना चल रहा है, लेकिन थोड़ा सहन कर लेंगे तो सहनशाह बन जाएंगे। और बाबा कहता है किसके लिए सहन कर रहे हो? मेरे नाम पर सहन करो। सहन करने की शक्ति अपने आप नम्रता वाली आत्माओं में आ जाती है। जहां सरलता और नम्रता है वहां पर सहन शक्ति साथ साथ रहती है, कोई भी उत्पीड़न नहीं होता, अंदर अंदर बहुत ज्यादा दुख नहीं होता। ठीक है, बाबा के लिए सहन कर लो। बाबा कहता बच्चे सहन करते जाओ, ये नहीं कब तक सहन करेंगे, मुझे ही सहन करना है क्या, मैं ही गलत हूं क्या, ये लोग अपने को समझते क्या है। छोटी छोटी बातों में इतना अंदर अंदर उत्तेजित हो जाते हैं। हम सभी राजयोगी बाबा के बच्चे चेक करें, दो बातों का ध्यान देना, जो नम्रचित आत्माएं हैं उनमें कभी आवेश और आवेग नहीं होता। वेग, वेग जो अंदर आता है ना, वेग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कई बार संबंधों में भी पता नहीं चलता, आंख बंद हो जाती, अंधे हो जाते, वेग कंट्रोल नहीं कर पाते और अपराध कर लेते, फिर जेल की हवा काटते। तो क्या करूं मैं, अपने वेग को कंट्रोल नहीं कर पाया। जितने आज अपराध हो रहे हैं, बलात्कार, हिंसाएं, कुछ भी हो रहा है, उसका कारण है व्यक्ति अपने वेग को कंट्रोल नहीं कर पाता। अंदर की उत्तेजना कहते हैं, उस वेग को कंट्रोल नहीं कर पाता। राजयोगी शीतल काया वाले, कभी भी आवेग में नहीं आना, कभी भी आवेश में आकर के, कोई को भी जोश में आकर के कुछ भी नहीं बोलना, बस चुप हो जाओ, नहीं अच्छा लगता, चलो ठीक है, इसने मेरी इज्जत नहीं किया, इसने मुझे सम्मान नहीं दिया, इसने मुझे सीट नहीं दी, बाबा तो मुझे सब कुछ दे रहा है ना। बाबा ने किस बच्चे को सम्मान नहीं दिया? लेकिन जरा भी कोई को कुछ सम्मान न मिलता है, क्लास में मान लो बहन पूछना भूल गई, भाई जी कैसे हो, ये तो मुझे देखती भी नहीं, अभी मैंने सेंटर बना किसको दे दिया, आ गया अहंकार, फिर क्लास में नहीं आएगा। बाबा कहता है अरे बच्चे, बच्चों से भले आपस में रूठो, बाबा से तो नहीं रूठो, मुरली तो नहीं छोड़ो, परिवार से रूठ गए, मुरली से रूठ गए, फिर ब्रह्मा भोजन नहीं खाएंगे, फिर भोग पर भी नहीं आएंगे। हाँ हम ठीक हैं, हम तो डायरेक्ट ऑनलाइन मुरली सुनते हैं, मुरली सुनने क्लास में आना बंद कर देते, थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के बैठ जाते। और आज के लिए साइंस ने साधन तो दिए, लेकिन साधन ने क्या किया, अलबेला बना दिया, आलसी बना दिया। सेंटर का वातावरण, सेंटर का स्नेह, वहां की शक्तियां, वहां योग तपस्या का बल, कितनी ब्राह्मण आत्माएं उसे वंचित है। समय हम तो अपने घर में सुनते हैं ना, कैसे सुनते हो मुझे ही पता है, क्या करते है सुनते है? सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, मोबाइल चल रहा है, आवाज आ रही है, आधी मुरली ऊपर से निकल रही है। स्टूडेंट लाइफ है क्या? स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। स्टूडेंट बन के स्नान पानी करके, स्वच्छ होकर के, एक अपनी ईश्वरीय ड्रेस पहन करके, आराम से बैठ के बाबा के घर में जाके मुरली सुनना। चलो कोविड था, कोई कारण था, इसलिए मना किया गया, भाई सरकार के नियम अनुसार नहीं आओ, लेकिन अभी क्या है, अभी तो ठीक चला है ना सब। जब कर्फ्यू लगेगा तब की बात फिर सोचेंगे, लेकिन अभी अलबेलापन, आलस्य, अलबेलापन घेराव कर रहा है। अच्छे अच्छे बच्चे आलसी बन गए, इसलिए सब ध्यान देना। बाबा के जो ईश्वरीय नियम है, मर्यादाएं हैं, वो हमारे जीवन के लिए सुरक्षा का साधन है। बाबा की शिक्षाएं हमारी रक्षा करती हैं। दूसरे के आगे कोई हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, ये रक्षक वो रक्षक जरूरत नहीं। बाबा की शिक्षाओं पर हम चलेंगे तो न माया वार कर सकती है, न भटकती हुई आत्माएं वार कर सकती हैं, न कोई तंत्र मंत्र वाले वार कर सकते हैं, न कोई दुश्मनी ले सकता है। बाबा हमारे सब प्रकार की रक्षा करता है। तो सबके पास रक्षा कवच है, अब इस भट्टी से अपना अपना रक्षा कवच बना के जाना। बहुत शुद्ध लाइट का कवच, पवित्र विचारों का कवच ऊपर डाल लो, जाओ जंगल में, कहीं भी चले जाओ, दुनिया में कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसे सभी नम्रता का कवच और अपने पवित्र विचारों का सुरक्षा कवच पहन करके रहना। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने एक एक बाबा की शिक्षाओं को ऐसे बताया, और हर एक के दिल दिमाग में हर एक बातें उतरती गई, ऐसे है ना? क्योंकि मुरलियां तो सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन जो विशेष आत्माएं अपने जीवन की धारणा के साथ बातें समक्ष रखती हैं, तो वो हमारे दिल दिमाग में उतरता जाता है, वो स्वरूप पाने में भी देरी नहीं लगता। तो इस भट्टी से स्वरूप ला करके कवच को हमेशा अपने साथ रखेंगे। भाई सब का कितना धन्यवाद करें तो भी कम है। अभी मेरे मन में एक ख्याल चल रहा था कि ब्रह्मा बाबा की अपनी वैल्यू, दादियों की अपनी वैल्यू, हर बात को, हमारी हिस्ट्री को दोहराते हुए भाई सब ने हमें पूरी बातें ऐसे हमें वहाँ उपस्थित करवा दिया, अनुभूति करा दिया। लेकिन मुझे भाई साहब के लिए एक संकल्प चला कि जैसे ब्रह्मा कैसे बने, नारायण बने, धन के लक्ष्मी, धन की देवी, तो लक्ष्मी को भी धन देने वाले नारायण बने, तो वो पद कोई ले नहीं सकता। तो ठीक ऐसे ही भगवान के महावाक्यों को मुरली का रूप देना। बाबा ने तो मुरली सुनाते गए है ना, उसको एक मुरली का रूप देना और उसको सब तक पहुंचाना। आप सोचिए, भगवान जो जो सुना रहा, हम भी सब हजारों बैठ के सुन रहे हैं, एक एक अक्षर को उन्होंने टाइप किया कितना फास्ट गति से और उसको एक मुरली का रूप दिया। तो ये श्रेय आपका ही है, कल्प कल्प आपका ही रहेगा। ऐसे महान भाग्यशाली आत्मा हमारे भाई साहब का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। क्योंकि यही पाठ पढ़ाया है ना करावन, लेकिन ये रोल किसी को नहीं मिलेगा ना। क्योंकि हर कल्प में बाबा के महावाक्यों को मुरली का रूप देना, महावाक्यों से प्रश्नोत्तर निकालना, धारणा के पॉइंट्स निकालना, वरदान निकालना, स्लोगन निकालना, वो हमें देना। इतना ही नहीं, ढूंढ ढूंढ के कहां कहां से मम्मा के, जहां जहां मम्मा बाबा गए हैं वहां जब उन्होंने महावाक्य सुनाए, वहां वहां के कलेक्ट कर करके वो हमारे तक पहुंचाए। एक बार ज्ञान सरोवर में मुरली चली, साकार वाणी, जानकी दादी सुना रही थी, भाई सब भी थे ज्ञान सरोवर में, नहीं यही पांडव भवन में भाई सब। कुछ बहनों को पहली बार, बड़ी बहनों को, कुछ लोगों को बुलाया था, यहाँ सुखधाम में भट्टी करवाया था। जुलाई का मास था, लगभग 50-60 बहनें आई हुई थी, मेरा भी एक भाग्य था उसमें। तो उस दिन दादी जानकी जी ने वाणी सुनाई, वो पहली बार थी। दादी सुनाते सुनाते कहने लगी, ये मुरली आई कहाँ से? आप सोचिए, जानकी दादी ने कहा, ये आई कहाँ से? कहाँ है राजू भाई? दादी ने राजू भाई को 2-3-4 बार वाणी के बीच में याद किया, मुरली सुनाते सुनाते। फिर आ गए भाई साहब, हाजिर हो गए, तो बोला, ये तो हमने पढ़ी नहीं, अव्यक्त वाणी नहीं है, साकार वाणी, लेकिन ऐसे लग रहा कि ये अव्यक्त वाणी है, तो ये कहाँ से मिली? तो आप सोचिए कि दादी को भी सोचना पड़ा, ये महावाक ये कहाँ से मिला? तो हम ब्राह्मणों के लिए भाई साहब ने कितनी मेहनत की होगी, कहाँ कहाँ से खोज निकाला होगा। जहाँ जहाँ मम्मा बाबा गए हैं वहाँ वहाँ से उनके पास भाई बहनों ने जो नोट किया, वो सारा कलेक्शन, ये सब कलेक्ट करके कोई शब्द ब्राह्मणों से वंचित न हो जाए, वो हमें पहुँचाया। ये कितना बड़ा पुण्य है, सारे ब्राह्मण परिवार आपके एहसान मंद हैं, आपका बारंबार शुक्रिया भाई साहब।
भर के दिखा रहे।